اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد عزادارن امام آٹھویں مجلس ہے ایٹ مجلس گلستان ہند ممبئی کی جو ہسٹری آف ہولی پلیسز پہ ہو رہی مسلسل وہ جگہیں کہ جہاں ہمارے امام دفن ہیں وہ امپورٹنٹ پلیسز کہ جہاں سے ڈیسٹینی بدلتی ہے تقدیریں بدلتی ہیں اگر خلوص دل کے ساتھ جا کے کوئی دعا مانگے اور وہ مخصوص جگہیں کہ جو جنت کے حصوں میں سے بھی ایک حصہ ہے کربلا کے لیے کہا گیا کہ اٹس اے پارٹ آف جنت کربلا کا جو حدود ہے کربلا جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جیسا ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مابین ممبر اور اللہ کے رسول کا جو ذریعہ ہے ممبر اور رسول کے ذریعہ کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو بھی ریاض الجنہ کہا گیا یہ سنی شیعہ سب کے پاس یہ سارے مسلمانوں کے پاس یہ حدیث ہے اور اسی لیے وہاں کا کارپیٹ کا کلر بھی انہوں نے بدل دیا ہر آدمی جا کے وہاں نماز پڑھتا ہے وہاں ایک رکعت نماز کا ہزاروں رکعت کا ثواب ہے اور یہ ثواب کہ جیسے تم جنت کے اندر نماز پڑھے تمام مسلمانوں کے پاس ہے رسول کی حدیث ہے کہ یہ حصہ جو ہے مابین حرمین کے مطلب خبر رسول اور ممبر رسول اس کا بیچ کا حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے اسی طرح کربلا کے لیے کہا گیا کہ مولا حسین کا جو روضہ ہے اور جو حدود ہے کربلا ہے آج دوپہر کی مجلس میں نے سلواسا میں بتایا کہ یہ جو حدود ہے جو پارٹ آف کربلا ہے جو باؤنڈری ہے وہ کسی کو نہیں معلوم صرف امام جانتا کہ کتنا کلومیٹرز کا وہ ریڈیس ہے ہر امام کے روزے کا ایک ریڈیس ہے نجف اشرف ہو کاظمین ہو جنت البقیع ہو سامرہ ہو مشہد مقدس اگر اس ریڈیس کے اندر دفن ہو جائے تو اس کا ایک اجر عظیم ہے تو اسی طرح ان زیارات کے بارے میں ڈیٹیل میں جا رہا تھا وہ جگہیں اس لیے کہ ہم جب زیارت پہ جاتے تو صرف امام کی زیارت کرتے اور واپس آ جاتے لیکن کاظمین ہو یا سامرہ ہو ہر پورے آپ سنتے ہوئے آ رہے کل ساتویں امام مصعب بن جعفر کا ذکر ہوا دو دن سے آج ایک صلوات پڑھ رہے محمد اب دو ہی مجلسیں رہ گئیں کل کی اور پرسوں کی تو آج نویں امام کا ذکر ہوگا لیکن مصعب بن جعفر کا وہ علی ابن یقطین والا واقعہ میں کمپلیٹ کر کے آگے بڑھوں گا اور آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ کاظمین جب آپ جاتے تو کاظمین کے اندر دو معصوم کے روزے ذریعے ایک ہے خبریں دو ہیں اندر آپ اندر جب دیکھیں گے تو آپ کو دو اندر قبور دیکھیں گے لیکن ذریعہ امام کی ایک ہی ہے یہ ایک عجیب زیارت ہے وہیں پہ اس ذریعہ کے اندر لیفٹ سائڈ پہ امام حسین کاظم ہے رائٹ سائڈ پہ نوے امام کا اب ذکر کروں گا میں تو کاظمین میں امام حسین کاظم علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا جو پیریڈ گزرا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت ترین زمانہ تھا سادات کے لیے سخت ترین شیعت کے لیے بہت سارا مجمع میکسیمم لوگ تخیے میں چلے گئے تھے اتنا ظلم عظیم آپ نے کل کئی کافی واقعات سنے کہ کیسے ہارون رشید نے ایک ایک کو مارنا شروع کیا اور پھر ساتویں امام کی چھٹے امام کی شہادت کے بعد کیسا ان لوگوں نے لیٹر بھیجا کہ ساتویں امام کو ختم کرو ساتویں امام کے زمانے میں ہارون کا جو پیریڈ تھا یہ گولڈن ایرا بولتے ہیں یہ گولڈن ایرا نہیں ہے سنہرا دور نہیں ہے اسلام کا یہ ظالم بادشاہ تھا انتہائی ظالم آپ نے اس کا ظلم سنا لیکن میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اس کا جو وزیر اعظم تھا پرائم منسٹر تھا علی ابن یقطین یہ امام کا چاہنے والا تھا کل اب میں نے دو واقعات سنے ان کے یہ جو اب میں واقعہ بتا رہا یہ اسی لیے پڑھ رہا کہ ہمارے لیے ایک میسیج ہو جائے کہ امام کو شیعہ کیسا چاہیے اگر میں امام کے حالات پڑھوں اور اگر یہ واقعہ نہ پڑھوں اور کوئی میسیج نہ ملے تو پھر مجلس کا مقصد پورا نہیں ہوگا देखो इमाम को शिया कैसा चाहिए, इमाम को चाहने वाला कैसा चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपन अली इब्ने यक्त. प्राइम मिनिस्टर है, ये जहन में रख के सुनो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ हारून रशीद डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी का ये प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी डायनेस्टी. उस वक्त इस्लाम आधी दुनिया में फैल चुका था, ईरान तक इस्लाम है, यमन तक इस्लाम है, सेंट्रल अफ्रीका में इस्लाम है, पूरा मिडिल ईस्ट मुसलमान है. उस वक्त इस्लाम जो है एक बिग पावर का नाम था, बिग पावर का. जब हारून का मामून का ये जो पीरियड आया, बेनते अब स्ट्रांग इस्लाम, उसमें उसका प्राइम मिनिस्टर. कल दो वाक़ात आपने सुने, वो गिफ्ट का और वजू का. अब सुनो, अली इब्ने यक्तीन हर साल जब हज पे जाता था तो सातवें इमाम से मिलने मदीने मुनव्वरा जरूर जाता. अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे. जब गया एक दफ़ा, जब एक साल हज पे गया, हज पे इमाम से मुलाकात नहीं हुई, मदीने मुनव्वरा गया मौला के घर पे. और एक बात यहाँ रोक के बोल दूँ कि हज पे जाओ या उम्रे पे जाओ, हज और उम्रा अगर तुम कबूलियत चाहते तो मदीने की ज़ियारत ज़रूर करना. कभी यह नहीं करना कि खाली उम्रा करके वापस आ जाए, जो आम तौर पे मुसलमान करते, शॉर्ट वेकेशन पे गए, चार दिन के लिए उम्रा करे वापस आ गए, कभी कबूल नहीं होता. हज के लिए भी रसूल की हदीस है, क्या कोई हज पे आया और मेरी ज़ियारत को ना आए? मतलब ये डिजास्टर है लाइफ का कि हज आज तुम हज कर रहे हैं रसूल की वजह से और उन्हीं की ज़ियारत नहीं कर रहे. तो ये हमेशा याद रखना, खाली उम्रा करके नहीं आना, एक दिन के लिए जाना लेकिन जाना ज़रूर मदीने मुनव्वरा. अली इब्ने यक्तीन मदीना पहुँचा, गौर से सुने, मदीना पहुँचा, इसमें कम्प्लीट मैसेज है इस वाक़े में. इमाम के दरवाजे को नॉक किया, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो लिबास में नहीं जाता था, प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाता था, छुप के जाता था. उसने अंदर से गुलाम आया, गुलाम आया, पूछा कौन, तो कहा बोलो अली इब्ने यक्तीन आया इमाम से मिलने. वो गया गुलाम, फिर वापस आया, आके कहने लगा कि इमाम इस वक्त बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, अभी नहीं मिल सकते तुमसे. इब्ने यक्तीन ने कहा शायद मौला बिजी होंगे. फिर थोड़ी देर, दो घंटे तीन के बाद फिर नॉक किया, फिर अंदर से जवाब यही आया कि इमाम इज़ वेरी बिजी, वो नहीं मिल सकते. फिर दो तीन घंटे के बाद गया, तीसरी दफ़ा जब मैसेज आया, ये समझ गया अली इब्ने यक्तीन कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, इमाम कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं इतनी दूर से आया, पाँच मिनट के लिए इमाम नहीं मिल रहा, अपनी ज़ियारत नहीं कर रहा है, क्या इमाम मुझसे नाराज़ है, क्या मेरी कोई ऐसी गलती हो गई? प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, हम अपनी लाइफ को देखें इस वाक़े से, हमारी पर्सनालिटी क्या, हमारी हैसियत क्या है अली इब्ने यक्तीन के सामने. वो इतनी बड़ी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर है, रिचेस्ट पर्सन, इतना बड़ा स्टेटस, लेकिन उसके बाद इमाम से मिलने तड़प रहा. कैसा, ऐसा नहीं कि गया दो दफ़ा इमाम बिजी थे तो आ गया वापस, बोला मौला मैं तो आया था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई. तीसरी दफ़ा वो बैठ गया दरवाजे पर, अली इब्ने यक्तीन बैठ गया दरवाजे पर, उसने कहा कोई बात है जो इमाम मुझसे नहीं मिल रहा, मेरे से गलती क्या होगी, मैं माफ़ी करवा लूँ. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कि 24 आवर्स में एक दफ़ा देखो कि कहीं तुम्हारे आमाल से तुम्हारा इमाम नाराज़ तो नहीं है. ग्रांटेड नहीं है इस्लाम में कोई चीज़, ईजी मत लो लाइफ को, खाली नमाज रोज़ा हज करके ये मत बोलो कि मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा. नमाज रोज़ा वाजिब है, मैं वाजिब को कम नहीं कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन ये डजंट मीन कि आप खाली ये इबादत करके इमाम राजी हो या ना हो, हमारे फ़र्क क्या पड़ता, मुंबई में तो हम बड़े आराम के साथ है, मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरी जिंदगी है. नो, यू हैव टू थिंक ऑलवेज 24 आवर्स में कि कहीं कोई मेरा अमल तो ऐसा नहीं हो रहा. इतनी बड़ी पर्सनालिटी, उसने क्या किया, बैठ गया मौला के दरवाजे पर, चार पाँच घंटे पूरा दिन निकल गया, नॉक किया, कहा मौला मुझे पाँच मिनट अपने दे दो. इमाम बाहर आए, इसने अपने सर को मौला के पैरों पर रख दिया, कहते हैं मौला प्लीज टेल मी मौला व्हाट हैपेंड, मौला मुझे बोला कि आप नाराज हैं. अब सुनो, इमाम ने कहा कि अली हमारा एक चाहने वाला तेरे दरवाजे पे आया था बगदाद में, अब्दुल्ला हाजत को लेकर आया था, तीन दफा वो आया और तीनों दफा तूने मिलने से इनकार किया, ठीक है तू बिजी था, बाद में तो मिल लेता, तू एक गरीब शिया से तूने मुलाकात नहीं की, कितने दरवाजे पे हमारे आते हैं, मैं क्या बोल रहा, कितने हमारी लाइफ में आते दरवाजों पे,
खाली एक इबादत को मत देखो, ये सारी इबादत है। अगर इमाम नाराज हो जाए ना, कोई सजदा कबूल नहीं होगा। दो दिन हूं बॉम्बे में अभी, इमाम को नाराज करके अगर मैं समझ रहा कि मेरी इबादतों के जरिए मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, नेवर। अल्लाह हमारे सजदों का मोहताज नहीं है। सारी इबादतें उसूल काफी, मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाख कुलेनी की मशहूर किताब, उसमें छठे इमाम का इरशाद, सातवें इमाम का इरशाद कि रोजे महशर हम अपने शियों की शिफात करेंगे, शिफात हम करेंगे। हम कितना, आप सोचो कितने हमारे दरवाजों पे आके चले गए, कितने लोग हमारे पास आ रहे। हमारा एटीट्यूड ये, हमारी जबान ये, हमारा गुरूर तकबर ये कि वी डोंट वॉन्ट टू सी पीपल। मेरे स्टेटस का नहीं है तो व्हाई शुड आई सी हिम, मेरे लेवल का नहीं है तो मैं क्यों मिलूं उससे। रास्ते में कोई मिलता है, इमाम कह रहा है अब्दुल्ला से तूने क्यों नहीं मुलाकात की, उस वो जानता था, फौरन उसने हाथों को जोड़ा, कहा मौला आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, अब मैं क्या करूं, मौला आप तो राजी हो जाओ। कहा नहीं, जब तक वो राजी नहीं होगा मैं राजी नहीं होगा। अली इब्ने यक्तिन ने कहा मौला वो तो बगदाद में है। कहा तो जन्नत अल-बकी जा, वहां पे तेरे लिए सब, हर किताब में यह वाकया मौजूद है। हयात अल-खुलूब में ले लो, हर किताब में, 14 सितार में, नजमुल हसन करारीन में लिखा। कहा बकी जा, मैं इसको शॉर्ट कर रहा, बकी जा वहां तुझे सवारी मिलेगी। एजाज इमाम ने पहुंचाया बगदाद, वो जाके सवारी पे बैठा, बगदाद पहुंच गया। बगदाद पहुंचा आधी रात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बनी अब्बास डायनेस्टी, मैं बार बार ये जुमला इस्तेमाल कर रहा डायनेस्टी का, पहुंचा 12 बजे रात को एक गरीब के घर पे नॉक किया। अंदर से अब्दुल्ला का फोन आवाज आई, कौन? तो इसने कहा अली इब्ने यक्तिन। ही वॉज शॉक्ड, ही कुडंट बिलीव, अब्दुल्ला कुडंट बिलीव। पूछा कौन अली इब्ने यक्तिन? का वजीर आजम। उसने कहा तुम मेरे घर पे आया, गरीब, बिल्कुल कोई स्टेटस ही नहीं है इसका, अली इब्ने यक्तिन वजीर आजम आया। फौरन दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला अली इब्ने यक्तिन ने हाथों को, प्राइम मिनिस्टर है, अपने सारे स्टेटस को एक तरफ रखा। यह मैसेज औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए है, औरतों के लिए भी है, किसी चीज पे गुरूर मत करो। अली इब्ने यक्तिन ने हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहा अब्दुल्ला तू मुझे माफ कर दे, अगर तू राजी नहीं होगा तो मेरा मौला मुझसे राजी, इस दौर का इमाम जमाना मुझसे राजी नहीं होगा, प्लीज फॉरगिव मी। अब्दुल्ला ने कहा मैंने माफ कर दिया, आप ऐसा मत करें। अब सुनो असल, ये पूरा वाकया मैंने पढ़ा इसके लिए। अली इब्ने यक्तिन ने कहा ऐसे नहीं, अपने इस रुखसार को जमीन पर रखा, उस जमाने में ये मार्बल फ्लोरिंग तो नहीं थी, खाक थी, जमीन पर इस रुखसारे को ऐसा रखा, रख के कहा अब्दुल्ला अपना दूसरा पैर मेरे रुखसार पे रख, मैं इस खाक के साथ इमाम के पास जाके बोलूंगा मौला देखो मैं निशान लेके आया। कोई कर सकता, मेरा मतलब यह नहीं कि तुम भी करो ऐसी, लेकिन थोड़ा सा डर तो पैदा करो, थोड़ा तो एहसास तो पैदा करो, थोड़ी सी फीलिंग्स तो पैदा करो कि कितने आ रहे कितने जा रहे। जो आज हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स है ना, जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है ना, जो हमारी लाइफ में रुकावटें हैं ना, जो मुंह तक रिस्क आके रुक रहा, जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे, उसका वन ऑफ द रीजन ये। इमाम अली बोलते कि जब भी तुम्हारी दुआ कबूल ना हो, जब भी तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट ना हो, चेक योरसेल्फ एंड से सॉरी। तो आज हमारा स्टेटस देखो, हमारा एटीट्यूड देखो, और एक शिया के इमाम को राजी करना 24 घंटे में, मेरा यूथ को मैसेज है बॉम्बे के, अगर तुम ये चाहते कि लिटरली इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन बॉम्बे अपना फ्यूचर बनाना चाहते तो जहन में हमेशा ये रखना 24 आवर्स में कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, मेरा इमाम जमाने का इमाम राजी हो। आज जमाने के इमाम को राजी करना है, मेरी टॉपिक जमाने का इमाम नहीं है, मेरी टॉपिक मुसबना जाफर और इमाम मुत्तकी है, जो बात है। अब आप सोचो ऐसे स्टेटस के बाद इतने बड़े हमारे पास क्या है यार, क्या दो फ्लैट है, तीन फ्लैट है और क्या है, उस पर इतना गुरूर? जो बिल्डिंग में जो फ्लैट्स है ना तुम्हारे, वो क्या है, यहीं रह जाएंगे, इमाम अली की सेइंग को गले में तावीज बनाओ, तावीज गले में तावीज बनाकर 24 घंटे सोचते रहो कि इमाम अली ने क्या कहा। इमाम अली ने किसी और से नहीं कहा, अपने चाहने वालों से कहा, उन औरतों से कहा, उन मर्दों से कहा, उन लड़कियों से कहा, उन लड़कों से कहा जो अली का कलमा पढ़ते हैं, उनसे कहा। क्या कहा? गए मेरे चाहने वालों, अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन जो बनाई है ना, जो तुम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतनी बड़ी जमीन जो पूरी दुनिया में जमीन है, कहा कि इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा है तुम्हारा? 6 फीट। सिर्फ 6 फीट के तुम मालिक हो। ये बॉम्बे के फ्लैट, ये न्यूयॉर्क के फ्लैट, ये जनीवा के फ्लैट, ये हम इसके मालिक नहीं है, सिर्फ 6 फीट के मालिक है। बस सबको पता है आरामबाग में 6 फीट या रहमताबाद में जो 6 फीट है ना, उसके मैं ओनर हूं इस जमीन का। जमीन पे मेरा कुछ नहीं है, इतना एक हिस्सा नहीं है, 1 इंच ज्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहां रहेंगी और वो 6 फीट के अंदर मुझे जाना है जो मेरी ओन लैंड है। बस इमाम को राजी करो। ये शियत का इंपॉर्टेंट मैसेज था जो सातवें इमाम की जिंदगी का था। अगर मैं 24 घंटे इमाम को राजी कर लूं, तुम समझो अगर राजी हो जाए ना, तो तुम्हारे सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे, तुम्हारी घर में हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। अगर तुम इमाम की इताअत करके रहो, रिस्क खुला हुआ रहेगा, जॉब सही रहेगी। मैं एक बात यहां रोक के बोल दूं, कल मैंने कहा था कि कॉल सेंटर में मेरा मत, मैंने ये नहीं कहा कि कॉल सेंटर में जॉब मत करो, मेरा मतलब यह था कि कॉल सेंटर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कि कॉल सेंटर हमारे यूथ का फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर कॉल सेंटर नहीं है। कॉल सेंटर में करो जॉब, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, लेकिन एक हद तक तुम्हारा एम यह रहना, तुम्हारा टारगेट यह रहना कि मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है। वहां रखो। शिया को इमाम अली वहां देखना चाहता, शिया को नीचे देखना नहीं चाहता। कॉल सेंटर इज नॉट योर फ्यूचर। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, डोंट वर्क, ऑफकोर्स काम करो, लेकिन ये पूरी जिंदगी कॉल सेंटर में मत गुजारो। कॉल सेंटर इज नॉट अवर फ्यूचर। लड़कियां लड़के कर रहे हो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट तुम कॉल सेंटर में करते हुए अपने फ्यूचर को, अपने एजुकेशन को इतना प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाओ कि तुम किसी कंपनी के सीईओ बनो, प्रेसिडेंट बनो, वो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। कॉल सेंटर तो बिल्कुल हार्डली, टू स्टार्ट इट्स ओके, बट इट्स नॉट योर फ्यूचर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सातवें इमाम की जिंदगी का वाक्य। अब मैं नवें इमाम, सातवें इमाम के बाद हमारा जमाना आठवें इमाम का आया, जो अल्लाह हमको गरीब इमाम की ज्यारत नसीब करे। बस मैं इतना ही बोलता कि गरीब इमाम की ज्यारत जरूर करो। इस इमाम ने अजीब वादा किया है, कहता है कि जो मेरी ज्यारत को आएगा मैं उससे 3 मरतबा मुलाकात करूंगा, 3 मरतबा, और सख्त तरीन लम्हात में मुलाकात करूंगा। जब मलकुल मौत उसके पास आएगा मैं जाके उससे मुलाकात करूंगा, पहली रात में जाके उससे मिलूंगा, और रोज़े मैशर डे ऑफ जजमेंट में उसकी मदद करूंगा। ये गरीब इमाम का अजीब वादा है। और एक गरीब इमाम की ज्यारत 10 हज और 10 उम्रे का सवाब है। एक ज्यारत मतलब तुम गए सलाम करे वापस आए, फिर गए सलाम करे वापस आए, जितनी दफ़ा तुम जाओगे उतने हज और उम्रे का सवाब मिलता है गरीब इमाम को। दुआ करो कि हर साल व्हेन यू कैन एफर्ड जाओ ज्यारत को जाओ। और एक चीज़ मैं बताता, को जब जाना ना तो पहली दुआ जो मांगना ना, फर्स्ट, देखिए कभी भी मांगो, जो भी मांगो मौला देते, लेकिन पहली तुम्हारी जबान पे ये दुआ ना, मौला फिर बुलाओ, बुला और निकलने से पहले फिर इमाम को बोल कर निकलना कि मौला प्लीज कॉल मी अगेन, मौला प्लीज कर। इस तरह तुम इमाम से वादा लेके बोल के निकल हर मासूम की ज्यारत के लिए, तो उससे क्या होता, तुम साल में एक दफा, और साल में जाने के लिए अभी आपको एक दुआ ज्यारत देता, वो ज्यारत पढ़ो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी ज्यारत मासूमीन की ज्यारत नसीब होती। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मोमिनीन, एक कार वहां पे ट्रैफिक को दूसरों को रोक रही, कार नंबर है MH01BY2107,
MH01BY2107. प्लीज जिसकी भी ये कार है वो कार हटा लें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो दोस्तों वक्त तेजी से निकल रहा। आठवें इमाम के बाद, आठवें इमाम का जो खातिल था मामून रशीद, उसने आठवें इमाम को जब शहीद किया तो उनके फर्जन नाइन्थ इमाम हमारे, उस वक्त उनकी एज 7 ईयर्स या 8 ईयर्स या मुख्तलिफ रिवायतें 9 साल की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं, 9 साल की एज थी जब आठवें इमाम की शहादत। और आठवें इमाम को एक ही बेटा, नवे इमाम, एक ही फर्जन। नवे इमाम की विलादत, अब मैं थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ रहा, नाइन्थ इमाम की विलादत 10 रजब को 195 हिजरी, 195 हिजरी 10 रजब। आपकी विलादत मदीने मुनवरा में होती है और आपकी शहादत 29 ज़िलक़ादा 11th मंथ ऑफ लूनार, 29th या 30th ज़िलक़ादा शहादत हुई बगदाद में, लेकिन आपको लाके काजमैन में अपने दादा के करीब बाजू दफन किया गया। आपकी विलादत है 195 हिजरी 10 रजब, शहादत है 220 हिजरी 29 ज़िलक़ादा। सबसे यंगेस्ट इमाम हमारे सारे इमामों में नवे इमाम है। बाज रिवायतों में 23 है, बाज रिवायत ज्यादा रिवायत है 25 ईयर्स की, 95 से 220, आप देख लो सिर्फ 25 साल की लाइफ थी नाइन्थ इमाम, सबसे यंगेस्ट। उसके बाद जो यंगेस्ट हुए वो 11वें इमाम हुए, वो 28 या 29 ईयर्स में। इमाम अली और हमारे अल्लाह के रसूल 63 ईयर्स के थे, दोनों की 63 ईयर्स की एज थी जब आपकी शहादत। सबसे ज़्यादा सिन 65 ईयर्स हमारे छठे इमाम का है, बाकी सारे इमाम मौला हुसैन ले लें, मौला हसन ले लें, लेट 50s में ये लोग सब शहीद हो गए। लेकिन यंगेस्ट इमाम अब मैं जिसका जिक्र करने जा रहा, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, यंगेस्ट इमाम है हमारी इमामों में। जब उनके वाले, अच्छा इनके वाले आठवें इमाम, इनकी माँ का नाम बीबी सबीका खातून, सबीका, सबीका खातून। अफसोस ये है कि हम लोग अपनी लड़कियों का नाम सबीका, सुमाना, सौसन ये नहीं रखते, इसलिए कि हमको मॉडर्न नाम चाहिए। नहीं, मॉडर्न नाम होंगे तो वी आर रियली एक्साइटेड। एक चीज याद रखो, मुझसे भी हमेशा पूछते हैं कि मौलाना कोई नाम बताओ, ये सितारा, ये स्टार। मैं हमेशा कहता कि स्टार्स के चक्कर में मत पड़ो, मैं यूथ को बोल रहा, लड़के लड़कियों को बोल रहा, नेवर कभी स्टार्स के चक्कर में नहीं जाना कि ये स्टार क्या बोल रहा, वो स्टार क्या बोल रहा। मैं बच्चे का नाम 18 आवर्स में पैदा हुआ, इतने मिनट में पैदा हुआ, इतने से, सब बकवास, कोई फायदा नहीं है इससे। मासूम का जुमला क्या है वो बोल रहा मैं, इमाम बोलते, मासूमीन बोलते, हमारे नामों पे नाम रखो बच्चों के। ये नहीं बोला कि ये सितारा देखो वो सितारा। मिसाल के तौर पे 3 शाबान को फोन आया था कि 3rd शाबान को मेरा बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखो, क्या सितारा बोल रहा। मैंने कहा यार 3rd शाबान को तुम मुझसे पूछ रहे, सीधा सीधा हुसैन रखो, क्यों रख रहे तुम सितारों के चक्कर में क्यों पड़, उसके नाम क्यों नहीं रखते जिसके दरवाजे पे सितारा उतरा, क्यों नहीं रखते बाबा जिसके दरवाजे पर सितारा आया उस बीबी का नाम रखो। लड़कियों के नाम जहरा जरूर रखो, जहरा, जहरा के माने नूर के, रोशनी के, ब्राइटनेस के। अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी लड़की की जिंदगी में ब्राइटनेस आए, रोशनी आए, हर माँ बाप चाहते कि उसकी लड़की की जिंदगी में रोशनी आए, अगर जहरा रखोगे ना तो वो सिफात पैदा होंगे, नाम के असरात होंगे। हमेशा मैं एक ही बात बोलता कि कोई दुनिया के नाम के चक्करों में मत पड़ो। मासूमीन के वाइफ्स के नाम, बीबियों के नाम, इमामों की माओं के नाम, बच्चियों के नाम, वो नाम रखो, उसके बाद देखो कि तुम्हारे बच्चों में बरकत कैसे होती। आज जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स है ना, ये इतने प्रॉब्लम्स है कि आपको, मुंबई में आप रहते हैं आपको अंदाजा नहीं है जितना मुझे अंदाजा है। यू कैन सी माई व्हाट्सएप, यू कैन सी माई ईमेल, कि कितने मैसेजेस, कितने प्रॉब्लम्स चल रहे, कितने लेटर्स आ रहे,
कि ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम क्यों वाई वाई वाई। इबादत भी है अज़ादारी भी है। इन्हें हद ये हो गई कि दीनी मदरसे में जा रहे। मैं वेरी मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा, गौर से सुनो, बहुत बंद अल्फाज में। दीनी मदरसे में जा रहे और अपनी वाइफ को मार रहे यहां पे। कैन यू इमेजिन, तुम शिया हो, हाथ उठाते बीवी के ऊपर, देन यू से यू आर ए शिया ऑफ इमाम अली, और तुम एवरी वीक बच्चों को तालीम दे रहे, यंग मैन 27-28 हाथ उठा, लिटरली वो खातून रो रहे और बोल रहे मैं छोड़ दूंगा। अरे बाबा छोड़ना, आप आज सुनेंगे नवे इमाम के हालात में कि क्या उनकी वाइफ ने कितना प्रॉब्लम किया था नवे इमाम को। उम्मुल फजल ने, मामून रशीद की बेटी थी, इमाम ने छोड़ दिया। इमाम हसन की वाइफ ज्यादा, जो दुश्मन हसन थी, जिसने जहर देके अपने शाह इमाम हसन को शहीद किया, मौला ने छोड़ दिया था। क्या मौला को नहीं मालूम था वो इम्तिहान था उनका? तलाक इतनी आसानी से नहीं होती। जहां तलाक होगी प्रॉब्लम होगा, अनलेस ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, अदरवाइज आज एवरीडे कोई केस आ रहा, एवरीडे कोई केस आ रहा, हाथ कैसे उठाते लड़की के ऊपर? हराम नहीं है तुम्हारी बहन के ऊपर कोई उठाए? आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। आई एम रियली सैड टू से ऑल दिस, इसलिए कि मैं नवे इमाम के हालात पढ़ा तो इनकी वाइफ भी बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटर थी और खातिल थी इमाम की, उम्र फजल, मामून रशीद की बीवी। आप सोचो ये तो हालात है हमारे, एंड वी से कि वी आर शिया ऑफ इमाम अली। हाउ कैन यू से यार, पहले इमाम अली की सीरत पे अमल करो, उसके बाद बोलो कि मैं इमाम अली का शिया हूं। इमाम अली की बात सुनो, मैंने एक बात बोला था, शान अली को मानना सिर्फ शियत नहीं है, फरमान अली को मानना शियत। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? फरमान अली को मानो, एक रूटीन की लाइफ से हटो, अपनी इस लाइफ को सोचो कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नवे इमाम की विलादत हुई 10 रजब, आपकी मां का नाम था सबीका खातून, अजीम पर्सनालिटी। ये वो बीबी कि जिसको सातवें इमाम ने सलाम भेजा, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। सातवें इमाम ने अपनी इस बहू को बोले सलाम भेजा था, सातवें इमाम ने नवे इमाम की वालदा को। विलादत मदीने में, शहादत बगदाद में। 7 ईयर्स का सिन था, मामून ने 8वें इमाम को जहर दे दिया। 7 साल के सिन में आप इमाम बन गए। वैसे हमारा अकीदा यह है कि इमाम पैदा इमाम होता है, दुनिया में आके इमाम नहीं बनता। तो जमाने के इमाम के कितने वाकयात है कि झूले में, और इमाम अली के कितने वाकयात है झूले के अंदर के। बहरहाल तो उसके बाद क्या हुआ, इमाम बगदाद में थे, मामून रशीद बगदाद आया हुआ था, इमाम सॉरी मदीने में थे, मामून मदीना आया हुआ था। इमाम एक रास्ते पे खड़े हुए थे कुछ लड़कों के साथ एक कोने में, मामून की सवारी वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ सामने से जा रहा था। जैसे ही उसकी सवारी, उसकी आज की जबान में बोलता हूँ उसकी कार, कार नहीं थी, बाद में नहीं पूछना कार क्या थी, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा, वो अपने कार में आ रहा था, जितने लड़के थे सब दौड़ के अलग अलग हो गए। कितना फ़र्क है दुनिया के खलीफा में और अल्लाह के खलीफा में। अल्लाह का खलीफा ये होता था कि बच्चे करीब आ जाते थे, जब इमाम अली चलते थे तो बच्चे करीब आते थे, इमाम अली एक एक बच्चे के सर पे हाथ फेरते थे। ये अल्लाह का रसूल का भी ये दस्तूर था कि बच्चों के सरों पे हाथ, हमेशा बच्चों को अपने साथ साथ लेके कि बच्चे बच्चे दीन सीखे। इसलिए मैं हमेशा बोलता कि यूथ हमारे साथ, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया का यूथ मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और चेंज यूथ में आना, जब चेंज यूथ में आता ना तो एक रिवोल्यूशन आता, इनकलाब आता। अगर यूथ को छोड़ दिया ना तो ख़त्म हो जाती लाइफ। तो सारे लड़के चले गए, नवे इमाम वैसे ही खड़े रहे। वो नवे इमाम को नहीं जानता था, खरीब आया, खरीब आके नवे इमाम कैसा देखता है, देख के बोलता है कि ऐ साहबजादे तुम क्यों नहीं हटे, जैसा दूसरे रास्ते हट गए। तो इमाम ने वेरी कॉन्फिडेंटली कहा कि मेरे ठहरने से रास्ता इतना छोटा नहीं होता था, कि मैं हट जाता तो बढ़ जाता।
क्या सुन रहे यार आप? मेरे हटने से रास्ता इतना बढ़ नहीं जाता कि मैं ठहरावा जाऊं। उसने कहा, वो 7 साल का बच्चा मुझे ऐसा जवाब दे रहा। वो चला गया, शिकार पे जा रहा था। शिकार से वापस आया, हाथ में मछली थी। उसी तरह खड़े हुए थे लड़के, सब चले गए इमाम वैसी कड़े, 7 ईयर्स ओल्ड बॉय ऐसी पकड़ लिया। वो आके कहता है कि वो नहीं जानता, ऐसे साहिबजादे ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तो इमाम ने वेरी कॉन्फिडेंटली कहा कि जो जुमले सुनो, जो दुनिया के हाकिम, ये नहीं कहा, जो दुनिया के बादशाह हैं, वो लोग शिकार करते हैं और मछली का शिकार करके खानदान अहले बैत के इल्म का इम्तिहान लेते हैं। जब ये कहा तो शॉक, ही सेड के व्हाट्स योर नेम, इंग्लिश में नहीं बोला, वो तो जाहिल था, नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। किसके बेटे हो? कहा अली रजा का। ही वाज शॉक, अली रजा के बेटे? बोला ये जवाब यही दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। उसके बाद उस बगदाद पहुंच के उसने इमाम को बुलवाया। बुलवा के जब इमाम का सिन 10 या 11 बरस का था, उसने ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी उमुल फजल का निकाह 10वें इमाम के साथ, 9वें इमाम के साथ करूंगा। शादी नहीं हुई, जब इमाम के एज 9 या 10 ईयर्स की हुई, उसने अपने पास बोला। क्यों बुलाया? उसने कहा कि ये, प्लीज गौर से सुनो, उसने कहा कि ये बेहतरीन मौका है कि ही सो यंग, सी सो यंग, 8, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, बेहतरीन मौका है कि इनको मैं अपने महल में रखूं, अपने पैलेस में रखूं, पैलेस में रखकर खुद तरबियत दूं, तो अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, और अगर बाहर रहेंगे तो ये तो इमाम है, तो 10 साल के सिन में अपने महल में रखकर अपनी बेटी से इनका निकाह कराऊंगा, अनाउंस कर दूंगा कि इनके ऊपर इतने ऑब्लिगेशंस डालूंगा और अपने महल में रख के परवरिश करूंगा। जबकि इस जाहिल को मालूम नहीं था कि इमाम को परवरिश की जरूरत नहीं है। दुनिया में आके इमाम की परवरिश नहीं लेता हमारा इमाम, रख के सोचा कि मैं चेंज कर सकूंगा। हुआ क्या, इमाम को अंदर वहां पे बुलाया और ऐलान किया कि मैं अपनी उम्र फसल का निकाह 9वें इमाम से करूंगा। बनी अब्बास की हुकूमत में हलचल मच गई। उन लोगों ने कहा कि तू कैसे कर रहा? अब्बासी खानदान के पूरे लोग आगे मामून के पास कहने लगे, तो हाउ कैन यू डू इट? इसलिए कि ये जो है बच्चा है, इनके बाबा ठीक है बड़े आलिम थे, इनको क्या, इनको क्यों इतना वो कर रहा? तो मामून ने कहा कि तुम नहीं जानते ना कि ये कितना बड़ा आलिम है, तो क्या ये बच्चा कैसे आलिम हो सकता? तो मामून ने कहा डिबेट करा लो, मुनाजरा करा लो, तारीख इस्लाम का ये अजीम मुनाजरा, हर किताब में जो तादाद बताई गई कि 3000 तो कुर्सियां चेयर्स रखी गई थी सारे पैसे वालों के लिए, नॉर्मल जो VVIP लोग थे। इस मुनाजरे में, इस डिबेट के बारे में कहा कि 5 या 6 हजार या 10 हजार के करीब लोग बैठे हुए, मुख्तलिफ रिवायतें 10 हजार, और किससे डिबेट करवा रहे थे? इस्लाम का उस दौर का सबसे बड़ा आलिम, एज क्या थी उसकी? 70 प्लस। इमाम की एज क्या है? 9 ईयर्स। यू कैन इमेजिन 70 ईयर्स का बूढ़ा 9 साल के बच्चे से बात करने आ रहा। खामोश नहीं सुनना, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ 10,000 के करीब, मामून तख्त पे बैठ, मामून कोई हमदर्द नहीं है, बाबा का खातिल है, वो अपने मफाद के लिए कर रहा था सब। ये मत समझो कि मामून जो है बड़ा हमदर्द था इमाम को, नो, खातिल इमाम रजा। ये जितने, एक चीज याद रखो, जितने दुश्मन अहले बैत होते ना, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए जिंदा रहते, समझ रहे, मफाद अपने इंटरेस्ट के लिए। यही तो बोलता हूं हमेशा कि अपने इंटरेस्ट को हटा के इबादत करो, कोई काम करो तो अपने मफाद को हटा के करो। अगर अपने इंटरेस्ट को बीच में लाओगे ना, तो कोई फायदा, कोई इबादत तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हर चीज, इवन डोनेशन दे रहे, इवन पैसे दे रहे, मिसाल के तौर पर अजादारा ने करबला को दे रहे, मिसाल के तौर पर आप तंजीमुल मकातिब को दे रहे, जब करें ये मत बोलो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा नाम हो रहा, मुझे देना। नो, इंटरेस्ट को हटा के कोई इबादत नहीं होती, इंटरेस्ट के साथ इबादत नहीं होती, इंटरेस्ट को हटा के इबादत होती। तो मामून जो था अपने इंटरेस्ट को देख रहा था। इसने कहा कि मैं डिबेट कराऊंगा, ऐलान किया सारी ममलिकत इस्लामिया से बड़े बड़े स्कॉलर्स आए,
debate 9 years old boy ke sath, 9 years, bar bar repeat kar raha hai ye jumla. You can imagine 9 years old boy, aur us waqt ka Islam ka sabse bada alim Yahya ibn Aksam, yah naam se yaad rakho, Yahya ibn Aksam, 70 plus age hai, itni badi daadi, uncha pajama, sherwani.
Main kuch bol gaya. In logon ke dresses aise hi hote the. Main naam nahi le raha, main apne alfaz ka zimmedar, aapke zehnon ka zimmedar nahi hu. Aap jo chahe soche, jo shakal batayi gayi wo shakal padha. Chal baat padhe Muhammad wal.
To pure usme elan ho gaya ke Yahya ke sath Ali Raza ke bete ka debate. Log bole yaar ye bacche ke sath kya kar rahe. Yahya, aur Yahya was so confident. So confident, 70 plus age. Acha aara itna ki to bachcha hai, main to inko aise karunga aur ye karunga aur wo karunga, plan karke pure jitne log the aake takht pe baithe, sabse last mein imam ko usne bulaya. Aap just imagine kare, bade hall mein 10,000 aadmi baitha hua hai, ek side ke upar Yahya ibn Aksam, uske pure log baithe hue, ek side ke upar Mamun Rashid baitha hua hai. Mera maula, mera nawa imam, 9 years old, lekin shaan-e-imamat thi, shaan-e-imamat thi. Ye apne daur ka wajhullah hai, Ali ka beta hai. Usi shaan ke saath, usi graceful walk karte hue, imam aaye to Mamun khada ho gaya. Jaisi Mamun khada hua, Yahya ko bhi khade rehna pada, pure majme ko khade rehna pada. Ye shaan hai imam ki. Dushman bhi khada hota, ये शान इमाम. इमाम आए 9 साल के, अभी मेरे मतलब 9 साल के बच्चे को ना दाढ़ी होती ना मुछे होती है, कितनी एज, और सामने इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी, और अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझने वाला, बड़ा आलिम समझने वाला आके बैठा. दोनों ऐसा बैठे, मेरी तरफ देखो, दोनों ऐसा बैठे. मामून कह रहा, यहिया को कहा कि स्टार्ट कर डिबेट. मैं पूरा डिबेट नहीं पढ़ रहा, मैं खाली आपको पूरा डिबेट पढ़ूंगा तो पूरी मजलिस ही डिबेट पे पढ़ूंगा. अगर आप इजाजत दें तो कल की पूरी मजलिस डिबेट पे पढ़ूं, लेकिन कल 10वें इमाम है, 11वें इमाम, दो ही मजलिसें रह गई मेरी. ये बैठा, उसने कहा कि लेट्स स्टार्ट. तो यहिया बड़ी आवाज के साथ, भारी आवाज के साथ, सर को उठाया हुआ यहिया, यूं बैठने वाला यहिया, उस वक्त ममलिकत इस्लामिया का सबसे, मिसाल के तौर पे अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त पूरे इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, रिलीजियस यूनिवर्सिटी. वहाँ के वाइस चांसलर बहुत अच्छे. अब वहाँ का कोई वाइस चांसलर, मिसाल दे रहा मैं, वाइस चांसलर एक 9 साल के बच्चे के साथ डिबेट कर तो क्या हालत होगी. उसका इल्म और ये बच्चे का इल्म, इनके जहनों में यही था कि तो बच्चा है. यहिया आके बैठ के पूछता के, सुनो जुमले सुनो, साहेबजादे मैं क्या पूछूं को सवाल करूं. वेरी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि साहेबजादे, ओ बेटा, बेटा बोल के बात कर रहा है, बेटा क्या मैं आपसे कुछ सवाल करूं. पूरा मजमा यहिया को देखता, क्या मैं बेटा कोई सवाल करूं. तो इमाम ने उससे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, क्या कहा, वही स्टाइल जो दादा का था, जो पूछना है पूछ ले. वही स्टाइल जो दादा का था कि जो पूछना है पूछ लो, खबर इसके कि अली तुम्हारे दरमियान से हट जाए. अपने दौर का अली है. कहा जो पूछना है पूछ. जब कॉन्फिडेंस को देखा नवे इमाम के, यहिया कहने लगा यार अब इस बच्चे से नमाज रोजे के मसले तो मालूम ही होंगे इनको, नमाज रोजे के मसले तो मालूम ही होंगे, रोजमर्रा की चीजें तो मालूम होंगी, चलो इनसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करता हूं. मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, तुम समझ रहे, इंग्लिश समझने वाले समझ रहे कि ट्रिकी का मतलब क्या है. कल लेट्स सम ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगे सबके सामने, पहले सवाल ही में खत्म हो जाए. वो अपने जहन में यह सोच रहा था. और इस्लाम के जो सबसे ज्यादा ट्रिकी मसले वो हज के, कि अगर अहराम ऐसा बन जाए, अगर तुम मीना पे नहीं पहुंच सको, रात में मुजदलफा पे नहीं जा सको, कुर्बानी नहीं कर सको, तो तुम्हारा अहराम बड़ी ट्रिकी कोशिश। अब सबके मसले हमारे तौजीह में मौजूद है। मैं जमला इस्तेमाल कर रहा ट्रिकी के, लेकिन हर मसला तौजीह में मौजूद है। इसीलिए हज पे जब जाना ना, तो सर उठा के नहीं जाना, पहले पूरे हज के रुकन को पढ़ना, उसके बाद हज पे जाना। इसलिए कि हज वाजिब है कि वहां जाके इधर उधर कुछ होगा तो एक बकरा देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 100-200 बकरे लग जाए आपको, नहीं। इसीलिए बोल रहा मसलों को मालूम करके जाना। तो ये समझ रहा था यहिया, क्या करूं, घड़ी इतनी तेज जा रही, 10-12 मिनट रह गए मेरे पास, बस अभी मसाइब भी है। ये समझ रहा था कि हज का सबसे ज्यादा ट्रिकी मामला है। हज का एक मसला पूछ लेते हैं तो सबके सामने पहले सवाल ही पे खत्म हो जाएंगे। नमाज रोजे का पूछूंगा तो बोल देंगे। वो अपने जहन में ये सोच रहा, उसने कहा, प्लीज गौर से सुनना, उसने कहा कि साहेबजादे बेटा ये बताओ कि अगर कोई हालत अहराम में, अहराम बांधने के बाद, आपको मालूम है कि बाज़ उलमा कहते हैं 21 चीजें, बाज़ कहते हैं 28। जैसे ही तुम मस्जिद शजरा या मस्जिद जौफा या कहीं से तुमने अहराम बांधा और तुमने फौरन नियत की, उम्रे की हो हज की, दोनों के मसले अलग हैं, तो 21 चीजें तुम पे हराम हो जाती, हर चीज हराम होती। म्यूजिक नहीं सुन सकते, झूठ नहीं बोल सकते, जो हमारी रूह की गिजा गीबत है ना, बैक बाइटिंग, वो भी नहीं कर सकते। उसके बाद बीवी को भी नहीं देख सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, बाल नहीं खींच सकते, किसी को मार नहीं सकते, वल्लाह झूठी कसम नहीं, ये सारी चीजें नॉर्मल लाइफ में भी हराम है। बीवी को देखना हराम नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। तो उसने ये समझा कि बेहतरीन सवाल करूं, पहले मसले में हल खत्म कर दूं। गौर से सुनो, यहिया कहता है कि साहिबजादे ये बताओ कि अगर कोई हालत अहराम में शिकार करे तो उसका कफारा क्या है। और सवाल करके पूरे मजमे को देखता है, देखो कैसा सवाल किया इस बच्चे से, अब देखो जवाब क्या मिलता है। कहता है हालत अहराम में अगर कोई शिकार करे तो उसका कफारा क्या है। जैसी देख के पलटा मजमे की तरफ, अब इमाम भी अच्छा, इमाम की अजीब शान रहती थी, कभी इमाम ऐसा देख के बात नहीं करते, हमेशा सर झुका के बात करते थे। आज इमाम ने सर को उठाया, पूरे मजमे को देखा, फिर यहिया की आंखों में आंखें डाली, डाल के कहा यहिया, पहला इमाम का जवाब, यहिया तेरा सवाल इनकम्प्लीट है। दोस्तों इतने बड़े आलिम के मुंह पे बोलना तू जो सवाल कर रहा है ये बिल्कुल मामूली सवाल है, इनकम्प्लीट है। यहिया ये बता कि वो अहराम जो था वो हज का था या उम्रे का था, हज वो कफारा, वो शिकार करने वाला चौपाए का शिकार किया था या परिंदे का शिकार किया था, कोई बड़े जानवर का शिकार किया था, वो शिकार करने वाला रात को किया था या दिन में किया था, वो आज़ाद था या गुलाम था, वो अपने अमल पे नादिम था या जिद कर रहा था, वो जाहिल था या आलिम। इमाम ने उसके एक सवाल पे 10 सवाल कर दिए उसको। अब तो यहिया के चेहरे पे पसीना आ गया, जो अपने आप को इसीलिए मैं हमेशा कहता कभी अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझो। खामोश हो गए नहीं, आई नो कैसे खामोश हुए, देखो नेवर 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 कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना, वो भी अहले बैत के मामले में। जो भी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता अहले बैत से वो हमेशा जलील होगा। जब इमाम ने इतने सवाल किया कि रात को क्या था, दिन में क्या था, हज का था, उम्रे का था, आजाद था या गुलाम था, वो अपने फेल पे नादिम था या इसरार कर रहा था, और कहा कि वो उसने मीना में किया या मीना के बाहर किया, काबे के अंदर किया या काबे के बाहर किया, 10-12 एक सवाल पे सवाल कर दिया। अब तो ही वो शॉक्ड, माथे पे पसीना आ गया, मजमे में सट्टा छा गया, जब मजमा सर उठा के देख रहा था सिर्फ मामून रशीद हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो तो जानता था उसलिए कि उसको एक्सपीरियंस हो गया था मदीने में, जलील वहां होके आया था ना, मैं क्या बोल रहा आपसे, जलील होके आया था तो उसको मालूम था कि ये बच्चे का इल्म क्या है, ये 8वें इमाम का बेटा है, 9वें इमाम। तो इस वक्त उसने कहा, जब पूरे मजमे में सकता छा गया, Everybody was shocked ke soch hi nahi sakte the ki ek bachcha imam ki vocabulary imam ka style bolne ka imam confidently aap socho ek boodhe ko ek 9 saal ka bachcha ye bol raha ke ye tha ye da tera sawal incomplete hai pehle apne cousin ko sahi kar jab ye kaha ye aisa ho gaya literally kitab mein ke maathe pe paseena aa gaya zaleel ho gaya na ab mamun ne kaha پھر امام نے پورا اس کو ایکسپلین کیا کہ مینا میں کفارہ کیا ہے مکہ کا کفارہ کیا ہے آزاد کا کفارہ کون دے گا غلام کا کفارہ کون دے گا دن میں کرے تو کیا مسئلہ ہے رات میں کرے تو کیا مسئلہ ہے چھوٹے جانور کا کیا یا بڑے جانور کا کیا یا اپنے فعل پہ نادم تھا نادم میں نے ایکسپٹ کر رہا تھا یا وہ اپنے فعل پہ ضد کر رہا تھا ہمیشہ یاد رکھو ضد کبھی نہیں کرنا کسی چیز کے اوپر ضد گناہ کر کے ضد نہیں کرنا یہ نہیں بولنا کہ ٹھیک ہے یار میوزک سن رہے سو واٹ یہ ٹھیک یہ کبھی نہیں بولنا کہ ہم یہاں جا کے کھاتے ہیں وہاں جا کے کھاتے ہیں سو واٹ یہ کبھی نہیں بولنا کہ میں کسی سے تیز بات کرتا ہوں سو واٹ یہ کبھی نہیں بولنا کہ میں جو ابھی کیا بولوں یار کرتا ہوں ڈرنکس سو واٹ ضد کبھی نہیں کرنا ضد شیطان نے کی تھی آج رجیم ہو گیا کبھی اہل بیت کے معاملے میں یا اللہ کی شریعت کے معاملے میں ضد نہیں کرنا آلویز یو ایکسپٹ یور سن دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف اس نے کہا جب امام نے یہ کہا اس امام نے اس کی تفصیل سنائی اب امام نے اس مامون نے کہا اب آپ اس سے پوچھیں کچھ امام نے کہا کہ اے یحییٰ تجھ سے میں کچھ سوال کروں جو اتنا اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا سر کو جھکا کے کہتا ہے کہ فرزند رسول سوال کریں اگر میرے پاس جواب ہے تو دے دوں گا ورنہ آپ ہی سے پوچھ لوں گا کیا بول رہے ہو یار کیا بول رہے ہو کہتا ہے اگر میرے پاس جواب اب تک تو بڑا اپنے آپ کو سورما سمجھ رہا تھا 70+ ایج ہے ڈیبیٹ کر رہا 9 سال کے بچے سے کہتا ہے اگر میرے پاس سوال کا جواب ہے تو میں دے دوں گا ورنہ آپ ہی سے پوچھوں گا مامون نے کہا تھا پوچھو تو امام نے بھی وہ سوال کیا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس کے نہیں پورے مجمع کی امام نے کہا یہ بتا کہ ایک غور سے سننا ایک آدمی نے ایک کنیز کے اوپر فجر سے پہلے نگاہ ڈالی تو اس کے لیے حرام تھی فجر کے وقت وہ کنیز اس کے لیے حلال ہو گئی ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی آدھی رات کو پھر حرام ہوئی صبح فجر پہ پھر حلال ہو گئی یہ بتا ایک لڑکی ایک مرد کے اوپر 24 گھنٹے میں 4 دفعہ حرام اور 4 دفعہ حلال کیسے ہوئی ہائے 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 اب میں آپ سے پوچھتا ہم تو بولتے کہ ہر کو دیکھنا حلال ہے بامبے یہ ہم کبھی سوچتے کہ یہ حرام ہے یہ کبھی سوچا میں یوتھ کو بول رہا یوتھ کو بول رہا چیک یور سیلف چیک یور سیلف لڑکیوں کو بھی بول رہا ہماری نگاہ میں کبھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے نیور ہمارے لیے تو ساری چیزیں جائز ہیں حلال ہیں یہاں تک کہا میں کیا بولوں میں بول ہی دیتا 2-3 دن پہلے مولانا اگر کبھی کسی کو دیکھ رہے ایک ہی نگاہ سے دیکھتے رہے دوسری نگاہ دیکھنا نہیں ہے ایک ہی نگاہ سے 5 منٹ دیکھتے میں بہت بند الفاظ میں بولا ہوں ایک نگاہ 2 نگاہ 3 نگاہ 4 نگاہ نہیں ہے اسلام میں تمہاری نیت ہے تمہارا انٹینشن کیا ہے نیت کیا ہے نیت اگر تمہاری خراب ہے حرام ہے امام نے کہا کہ ایک عورت 4 وقت کیسے حرام اور کیسے حلال ہوئی پورے دربار میں سکتہ چھا گیا مامون رشید کی ہوا اڑ گئی یحییٰ تو سر کو جھکا کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا جسٹ امیجن 70 ایئرز کا بوڑھا کہتا ہے فرزند رسول مجھے نہیں مانو امام نے کہا یہ بیسک مسئلہ ہے اسلام کا کہ ایک لڑکی 4 وقت حرام کیسے 4 وقت حلال ہوئی میں تیزی سے بول دیتا امام نے کہا کہ وہ کسی کی کنیز تھی فجر سے پہلے اس کو دیکھنا حرام تھا فجر کے وقت اس نے خرید لیا تو حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس نے آزاد کر دیا حرام ہو گئی، عصر کے وقت خرید لیا حلال ہو گئی، مغرب کے وقت نکاح کیا حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس کو طلاق رجائی دی حرام ہو گئی، آدھی رات کو کفارہ دیا حرام، کفارہ دے کر اس کو رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی. امام نے کہا ایک لڑکی، اب یہاں پہ ٹرائی نہیں کرنا ایسا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، آج کنیزوں کا تصور نہیں ہے. امام نے کہا کہ ایک وقت میں، ایک دن میں ایک لڑکی چار مرتبہ حرام چار مرتبہ حلال ایک انسان پہ. بس اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ فرزند رسول، یہ مسئلہ، یہ بیسک مسئلہ اسلام کا. دوستو یہ وہی بتا سکتا کہ جس کے گھر کی شریعت ہو، نو امام کی گھر کی شریعت، حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بس میں بات کا بس یہی روک رہا ہوں، میرے اشارے آ رہے ہیں وہاں سے کہ ٹائم ہو گیا. کسی کے یہاں پہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کاپس کا ہے، ٹائمنگز کا ہے. 10 بجے کا پرمیشن ہے، 10 بجے کے بعد مائک نہیں چل سکتا. تو بس 2 مجلسیں رہ گئیں، کل 9 امام کے کچھ حالات اور پڑھوں گا اور 10 امام کے، اور آخری مجلس 11 امام اور زمانے کے امام کے کچھ حالات. مجھ سے بڑا پریشر میرے کچھ دعا کے لیے کہ کام منہ تک آ رہا رک جا رہا. ہر کام میں آبسٹیکلز بہت ہیں، ہرڈلز بہت ہیں. اس کے لیے، رسک کے لیے آپ ٹرائی کرنا، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ. 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو اس امام کی، 9 امام کی. حاجت کی نماز پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 18 مرتبہ صلوات پڑھو یا 100 مرتبہ پڑھو، کوئی حرج نہیں، منیمم 18 مرتبہ پڑھو. اور 9 امام سے رزق حلال مانگو. اگر تمہاری انکم 10,000 کی، مثال کے طور پہ 100,000 کی برکت ہوگی. رزق ہے اس لیے کہ اس امام کا لقب جواد ہے، تخی اور جواد. جواد سب سے زیادہ مشہور ٹائٹل جو امام کا ہے وہ جواد ہے، اور تخی بھی ہے اور جواد بھی. نام محمد ہے لیکن القاب میں 2 لقب آپ کے بہت مشہور ہیں. جواد کے معنی کہ بے مانگے عطا کرے، جواد کے معنی کہ سب کو دے. جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت اس امام کی رزق کے بارے میں، اور حلال رزق کے لیے اس سے بہتر نہیں. دوسری چیز، اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ 9 امام کی زیارت پڑھے 40 دن تک ڈیلی. 9 امام کی زیارت آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائے گی، مفاتی میں بھی موجود ہے. رشتے کے لیے بہت اچھی زیارت ہے، رشتے کے لیے. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا رشتہ ہو جائے کسی کے ساتھ، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں رشتہ آئے، لڑکی چاہتی کہ میرا رشتہ اچھا امام کے چاہنے والے کا ہو، اور یہ زیارت وینزڈے سے شروع کرنا، چارشمبا بدھ سے، اس لیے کہ یہ امام کا دن ہے. ایک وینزڈے سے شروع کرو، نیکسٹ وینزڈے تک پڑھو، اسی طرح 40 ڈیز. اور لڑکی کسی حالت میں بھی، حالت نجاست میں بھی تم زیارت پڑھ سکتے، خالی حروف کا ہاتھ لگانا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنا. 2 رکعت نماز پڑھنا حاجت کی اور امام کی زیارت پڑھنا، تو تمہارے گھر میں رشتہ آئے گا. لیکن تم دعا کرنا کہ مولا آپ اپنی طرف سے، اپنے مولا حسین کا، آپ کا چاہنے والا ایک عزادار مجھے عطا کرے. لڑکی خود مانگے کہ مولا آپ مجھے عطا کرو، تو امام خود عطا کرتا. 40 دن کے اندر گھر کے اندر تمہارے رشتہ آئے گا. لیکن پھر میں ہمیشہ ایک بات بولتا، کوئی دعا مانگو، کوئی زیارت پڑھو، وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے. وداؤٹ کنڈیشن کوئی زیارت نہیں ہے. اگر میرے آبسٹیکلس ہیں لائف میں، میری کوئی رکاوٹیں ہیں، تو یو ہیو ٹو چیک یور سیلف، مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. اور استغفار کثرت سے پڑھو. یہ امام 25 سال کے سن میں یہ امام شہید ہوتا ہے، لیکن ایسے تحفے دے کے گیا اس امام کے. تقیہ جواد رزق کے لیے بہت اچھا. اگر کوئی روز امام کی یہ زیارت پڑھے گا، اس زیارت کے ساتھ زیارت وارثہ، مولا حسین کی جو زیارت وارثہ ہے وہ بھی رزق کے لیے بہت اچھی ہے. وہ زیارت آپ فجر کے بعد پڑھو. فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی زیارت وارثہ سے اپنے دن کا آغاز کرتا، اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا. لیکن پھر وہ، میں بار بار ایک جملہ بول رہا، کنڈیشن کے ساتھ ہے. اور رشتے کے لیے، لڑکی کے رشتے کے لیے یا لڑکے کے رشتے کے لیے یا اولاد کے لیے، اس امام کا واسطہ دے کر اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگے تو اس امام کی زیارت پڑھو، 40 دن زیارت پڑھو، کوئی بڑی زیارت نہیں ہے۔ میں تمام لڑکیوں سے، میری بہنوں سے میں بول رہا کہ یہ زیارت پڑھو اور پڑھ کے دعا کرو کہ مولا آپ یا امام محمد تقی جواد، آپ جو ہے امام حسین کا چاہنے والا، آپ کا چاہنے والا مجھے عطا کرو، تو معصوم کی طرف سے تمہارے گھر پہ رشتہ آئے گا۔ لیکن پھر میں بار بار ایک جملہ ریپیٹ کر رہا کہ ڈونٹ بلیم می لیٹر آن کہ آپ نے بولا اور ہم نے پڑھا اور رشتہ نہیں آیا، تو وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے پھر آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے، رزق حرام زبان پہ نہیں رکھنا ہے، آنکھ کا گناہ، میوزک ویوزک گانے نہیں سننا ہے، وہ ساری چیزیں، اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنا ہے، اپنی وائس کو، اپنی وائس کو ریز نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے، یہ سارے کنڈیشن، اور واجب نماز کو ادا کرنا، اس کے بعد تم یہ پڑھو گے تو تمہارے گھر کے اندر رشتہ آئے گا۔ ساری بامبے کی لڑکیاں جان جان زینبیا چینل کے تھرو میری مجلس دنیا میں سنی جا رہی، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کہاں کہاں سن رہے، تو وہاں پہ سب کے بورڈ ساری لڑکیوں کو گلوبل میسج دے رہا، گلوبل میسج دے رہا کہ لڑکیوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے رشتے کا، وہ رشتہ دور ہو سکتا اگر تقیہ جواد کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس دوستوں، میری مجلس میرا وقت ہو گیا، 2 مجلسیں ہیں بس، کل اور پرسوں۔ کوشش کرو کہ ٹھیک 9 بجے آ جانا۔ آئی نو ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر از ورکنگ ڈے، بٹ ٹرائی ٹو کم بائی 9 o'clock پہ انشاءاللہ، 9:05 کے قریب ممبر پہ آ جاؤں گا۔ کل 10th امام کی جو دعائیں ہیں وہ دوں گا، اور پرسوں 11th امام اور زمانے کے امام کی آخری۔ کل بھی انشاءاللہ نیاز کا انتظام ہے، مومنین نے یہاں پہ نیاز کا انتظام کیا ہے۔ اللہ گلستان ہند کے جو انتظامیہ ہیں، جو مینجمنٹ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت کرے۔ آپ کو معلوم، مجھے بتایا گیا کہ یہ جو عشرہ ہے ماشاءاللہ 40 سال سے ہو رہا، سنس لاسٹ 40 ایئرز، یہ گلستان ہند کا بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی ان کو توفیق ملی، بڑی عزت ملی کہ یہ لوگ مجلسوں کو ارینج کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس عزاداری کی وجہ سے کتنی ایسی بلائیں ہوں گی جو اس گھر میں، اس بلڈنگ میں آنے والی ہوں گی، وہ ساری بلائیں ہٹ گئیں۔ اس لیے کہ ذکر حسین 10 دن ہونا، کہیں بھی ہو 10 دن، ایک رحمت، مکمل بلیسنگ کا نام ذکر حسین۔ اور آج کی تاریخ 19 محرم ہے، آج شب 20 محرم کی شب ہے، میرے مولا حسین کا 10واں بھی ہے۔ کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا یہ جملہ، آج حسین کا 10واں بھی ہے، اور ایک روایت سے آج شب شہادت بی بی سکینہ بھی ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں، پورے ساؤتھ میں، اب ہم ویسٹ میں اس وقت، ویسٹ میں اور نارتھ انڈیا میں 10 سفر مانی جاتی، 9 سفر شب شہادت نارتھ انڈیا میں۔ ساؤتھ انڈیا میں بنگلور، حیدرآباد، مدراس، یہ بیلٹ میں، ساؤتھ میں 20 محرم بی بی سکینہ کی شہادت ہے۔ دوستو 20 محرم ہو، 9 سفر ہو، ہم تاریخ پہ نہیں روتے، ہم اس ظلم پہ روتے جو 4 سال کی بچی پہ ہوا۔ بس یہ سوچو کہ اس بچی کا ذکر آج ہے کہ جس کے لیے میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ دوستو میں ہمیشہ جب بھی بی بی کی مجلس پڑھتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بی بی سکینہ کی مجلس میں ہو سکتا مولا حسین کی سواری آئی ہے۔ اگر حسین یہاں پر ہیں تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی بولتا، مولا اس بچی کا ذکر ہے کہ جس کو اتنے تماچے مارے گئے، جس کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے بلند ہوئے، مولا جس کو رونے نہیں دیا۔ دوستو ہر سال الحمدللہ کربلا جاتا ہوں ماشاءاللہ، سال میں 2 دفعہ المنتظر کے تھرو۔ اس سال المنتظر والے دیوالی میں، نومبر میں قافلہ جا رہا کربلا مولا، اور 24 دسمبر سے عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، جو کرسمس ویکیشن ہے۔ انشاءاللہ میں عمرے کے لیے I'm going to lead the group انشاءاللہ۔ تو جب زیارت پہ گئے، 2 سال پرانی بات بول رہا، تو مولا حسین کے حرم میں جہاں قتلگاہ ہے نا،
खतलगा आप जानते हैं, मौला का जो खतलगा का बाहर से भी ज़ियारत होती है, उसकी लाइट्स लगे। ये कौन सी जगह है खतलगा? जहाँ हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए थे। ये वो जगह है जहाँ शिमिन ने खंजर चलाया था। दोस्तों तकल्लुफ से मत रहो, तकल्लुफ से मत रहो। खंजर जहाँ चला था ये वो जगह, ये वही जगह है कि शाम गरीबा में जहाँ सकीना बाप के जख्मी सीने पर सर रखी हुई। जब मैं वहाँ मजलिस पढ़ रहा था, ये मौला ने बहुत बड़ा ऑनर दिया, बहुत बड़ी इज्जत दी कि हरम हुसैन में उर्दू मजलिस माइक के ऊपर स्पीकर्स पे हुई, पूरा हरम गूंज रहा था, हर तरफ स्पीकर्स पे मजलिस। ये मजलिस उर्दू स्पीकिंग मजलिस हुई और उस पहले सलाम हुए, नोहे हुए, मरसिए हुए, तकरीर मजलिस मेरी थी। तो वह बैठ के मिंबर पे बैठ के पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक जुमला बोला था, वो जुमला यहाँ बोल रहा हूँ। आप सोचो कि खतलगा के पास मौला हुसैन का जिक्र हो रहा था और लोग सर पीट के रो रहे थे वहाँ पे, जितने उर्दू स्पीकिंग इंडिया पाकिस्तान के थे, भरा हुआ मजमा था हरम में, सब बैठ के रो रहे थे। खतलगा पे एक उर्दू मजलिस हो रही थी स्पीकर के ऊपर, इमाम हुसैन की शहादत पढ़ रहे थे। मैंने शहादत पढ़ते पढ़ते बोला कि तुम सर पीट के यहाँ रो रहे, कोई मुंह पे तमाचा मार के रो रहा। मैंने कहा तुम जानते हो ये जगह कौन सी है? ये आज जब तुम तमाचा मार रहे, आज जब तुम हुसैन को रो रहे, तो कोई तुमको तमाचे नहीं मार रहा, कोई तुम्हारे ऊपर ताजियाने बुलंद नहीं कर रहा। ये वही जगह है कि जहाँ सकीना ने आके बाबा को याद किया तो शिमिर तमाचे मारता था, ताजियाने बुलंद हो रहे थे। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। दोस्तों सकीना उस मजलूम बीवी का नाम है, उस गरीब बच्ची का नाम है कि जिसके नाज अब्बास उठाते थे, हुसैन जिसके नाज उठाते। आपको मालूम है बीबी सकीना वो शहजादी है कि जब से ये बीबी चलने लगी, 6 महीने 8 महीने 1 साल में जब से ये चलने लगी ना, सबसे कम चलने वालियों में सकीना थी। इसलिए कि जैसी चंद कदम चलती, कभी अब्बास गोद में उठा लेते, कभी रबाब गोद में उठा लेती, कभी हुसैन गोद में उठा लेते, कभी शहजादा अली अकबर अपनी छोटी बहन को गोद में लेता, कभी मेरी बीबी जैनब गोद में ले लेती, कभी हुसैन लेते। ये बच्ची चली नहीं, इसलिए कि चंद कदम चलती, ये सबकी फेवरेट थी, सबकी चहीती थी, हर के पास जाती थी। लेकिन इस बच्ची पे जुल्म ऐसा हुआ कि करबला से कूफा, कूफे से शाम, जो बच्ची कभी चली नहीं उसको इतना चलना पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, आज की रात का हक है, आज की रात का हक है। सकीना के मसाइब आज ऐसा पुरसा देना कि आज रबाब के दिल को सुकून मिले। जो कुछ तुम्हारी हाजात है ना, रबाब से मांग लो। ये अजीब बीबी है कि जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी। इसीलिए रबाब ने रुखसारे को रख कर हुसैन के मज़ार पे एक जुमला बोला था कि मौला मैं वतन जाके क्या करूँ, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, गोदी भी उजड़ गई। ये अजीब मजलूम बीबी है। तो दोस्तों सकीना उस मजलूमा का नाम, उस मजलूमा का नाम कि सबसे ज्यादा हुसैन। आपको मालूम है मौला हुसैन ने नमाज शब में मांगा था, अगर किसी को लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, लड़की चाहिए तो इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को शब नमाज में मांगा था और यह कहा था कि परवरदिगार मुझे एक बेटी अता कर कि मैं उससे ज्यादा बहुत मोहब्बत करूं और तेरी मोहब्बत में उसको छोड़ के चला जाऊं। अगर किसी को लड़की चाहिए तो नमाज शब में सकीना का वास्ता दे। और इमाम अली ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था और यह कहा था कि परवरदिगार मुझे एक बेटा अदा कर जो मेरी शुजात का वारिस बने। ये मौला अब्बास के लिए, लड़के के लिए भी शब नमाज है, लड़की के लिए भी शब नमाज है कि औलाद अता करता अल्लाह। हुसैन ने शब नमाज में सकीना को मांगा और मौला हुसैन इतना यतीमों का ख्याल रखते थे, इतना ख्याल कि दोस्तों जब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई तो हुसैन एक जगह ठहरे हुए थे। हुसैन ने बीबी जैनब से कहा था कि जैनब रुखैया बिनते मुस्लिम को लेकर आओ, जो जनाब मुस्लिम की यतीम थी, 6-7 साल का सिन था। रुखैया को लेकर आए, हुसैन ने अपने जानू पे बिठाया, बच्ची के सर पे हाथ फेरा, बोसा दिया, कानों में गोशवारे पहनाए। اہل بیت کی گھر کی بچی تھی سمجھ گئی, کہنے لگی چچا آپ تو ایسے سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. حسین نے کہا تھا بیٹی تمہارا بابا مارا گیا, مسلم شہید ہوئے, لیکن اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا, ابھی حسین زندہ ہے. وہیں سکینہ ٹھہری ہوئی تھی, بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا, لیکن ہائے شام غریباں, سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہے اور شمر کے تازیانے ہیں, اور سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی اور کہہ رہی بابا مجھے دیکھو, بابا میرا حال کیا ہو گیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, آج کی رات اسی طرح پرسا دینا, اسی طرح پرسا دینا, آج رباب تم کو دعا دے, رباب تم کو دعا دے. دوستو واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد, کچھ زمانے کے بعد, مقام نینوا کے لوگ جو کربلا کی بستیاں تھیں وہاں کے لوگ مدینہ منورہ آئے, چہتے امام سے ملاقات کی. بس میں مجلس ختم کرا تیزی سے. وہاں پہنچے اور چہتے امام سے کئی سوالات کیے, آخر میں کہا مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے. دوستو عجیب سوال تھا, امام تڑپ کے رونے لگا. امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. کہتا ہے مولا یہ بتائیے جب خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے. دوستو امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی, آنکھوں میں آنسو, چہرہ سرخ, تسبیح تھی. کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے, ویسی جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی, شمن نے وہ تماچا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی, پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو, اسی طرح پرساد ہو. جب خیمے جلے تو سکینہ باہر آئی. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے 4 سال کی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, وہ آگے بڑھ رہی. تو اس وقت میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کے اس کی آگ کو بجھاؤں, جیسی میں چند قدم آگے بڑھا وہ بچی پیچھے ہٹ گئی. کہا شیخ ہم اہل بیت ہیں, ہمارے قریب نہیں آنا. اس نے کہا نہیں بی بی میں تمہاری آگ بجھانا چاہتا ہوں. تو سکینہ نے کہا شیخ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا, کسی نے کانوں سے گوشوارے چھین لیے, تو یہ بتا نجف کا راستہ کہاں ہے, نجف کا راستہ. تو حمید نے پوچھا نجف جا کے کیا کرو گی. کہا جا کے دادا سے فریاد کرو گی کہ دادا میرا بابا مار ڈالا گیا, دادا میری دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, دادا میرے رخسار نیلے ہو گئے. یہ ہے مبس, میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو قافلہ چلنے لگا, 11 محرم کو قافلہ کوفے کی طرف بڑھا. جس نیزے کے اوپر, جس نیزے کے اوپر مولا حسین کا سر مبارک تھا, وہ نیزہ چلتے چلتے رک گیا. شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے تازیانے کو بلند کر کے کہا سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھتے. امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے, نیزے کے قریب آئے, حسین کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو ہے, حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. امام نے کہا کہ بابا, چوتھا امام کہتا ہے بابا اب آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا کہ میں اور تازیانے کھاؤں, بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے. حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہتے ہیں بیٹا میں کیسے آگے بڑھوں, میری سکینہ اون سے گر گئی, میری سکینہ گر گئی بیٹا, میں بغیر سکینہ کے کیسے جاؤں. بس دوستو جناب زینب اور چوتھا امام ڈھونڈتے ہوئے چلے تو دیکھا کہ گوشہ صحرا میں ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ہے, سکینہ کو گود میں بٹھائی ہوئی ہے, سر پہ ہاتھ پھیر رہی اور کہہ رہی بیٹا گھبرا مت, کبھی پیار کرتی. زینب نے قریب جا کے کہا بی بی تم کون ہو جو میری بچی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے, ورنہ تو اس بچی کو لوگ تماچے مارتے. تو اس وقت اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا, زینب نے ایک عرصے کے بعد اپنی ماں کو دیکھا, فاطمہ کو دیکھنا تھا, دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دیا, کہا اماں گھر اجڑ گیا, اماں میرا بھیا مار ڈالا گیا. بس بس میں نے مجلس ختم کر دی. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسا تو آج شب شہادت ہے, آج شب شہادت ہے, حسین کا 10واں. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. آنکھوں میں آنسو, کوئی بغیر آنسو کے اٹھے نہیں یہاں سے, اس لیے کہ اس بچی کا ماتم ہے جس کو رونے نہیں دیا.
आज रबाब को पुरसा दो, रबाब को पुरसा दो, मौला अब्बास को पुरसा दो। दो मिनट में मैं मजलिस खत्म कर रहा, सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ कि हुसैन सकीना को कितना चाहते थे। जब यह काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, यजीद के दरबार में जब यह काफिला पहुंचा तो एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई थी, यजीद जालिम तख्त पर बैठा हुआ, सामने हुसैन का सर है और सर के ऊपर तश्त तिला के ऊपर कपड़ा। यजीद ने सैदानियों को देखा, शिमर से पूछा कि ये कौन है, कहा ये अली और फातिमा की बेटियां हैं। कितना 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 आसानी से मैं बोल रहा, कितनी आसानी से मैं बोल रहा कि दरबार में अली और फातिमा की बेटियों का जिक्र हुआ। उसके बाद यजीद ने कहा कि ये बच्ची कौन है जो एक पैर जमीन पर रखती है एक पैर उठाती कौन है। तो शिमर ने कहा इस बच्ची का नाम सकीना है, हुसैन बहुत चाहते थे, अपने सीने पे सुलाते थे, ये हुसैन की बहुत लाडली थी। बस ये कहना था यजीद पलटा, भाई इसी वक्त पे मजलिस खत्म कर रहा, एक मिनट के अंदर यजीद पलटा सकीना की तरफ और सकीना की तरफ पलट के कहा कि सकीना तुम एक पैर जमीन पे क्यों रखती हो और एक पैर उठाती क्यों हो। अजीजो भरे हुए दरबार में हुसैन की यतीम ने कहा कि यजीद तेरे लोगों ने इतनी जोर से रस्सी बांधी है कि सकीना दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकती। अजीज और यजीद ने कहा कि रस्सी खोली जाए, बस मजलिस खत्म हो गई। उसके बाद यजीद रस्सी खोली, यजीद ने कहा ए सकीना हमने सुना कि तुम बाबा को बहुत चाहती थी। भरे हुए दरबार में सकीना ने कहा यजीद बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे, बाबा मेरे नाज उठाते, बाबा मेरी मुझे प्यार करते। यजीद ने कहा सकीना अपने बाबा से मिलोगी, ये कहकर तश्ते तिलापे से कपड़े को हटाया। बस कपड़े को हटाना था, सकीना ने बाप के कटे हुए सर को देखा, चंद कदम आगे बढ़ी। यजीद ने कहा ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, पुकारो अपने बाबा को। तो पूरे दरबार में फटे हुए पैराहन को फैलाया, दरबार में पैराहन को फैला के कहा बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, बाबा मेरे पास आ जाओ। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, बच्ची ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया, कहा बाबा मेरे रुखसार देखो, बाबा मेरे काम। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ के रोए। मैं दुआ करा रहा, फातिहा पढ़ के उठना, दो मिनट। परवरदिगार मेरे मासूम शहजादी का वास्ता, मौला हुसैन की मजलूम बच्ची का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत का नाजिल था। सब मिल के आमीन बोलो। ख़ास दुआ का वक्त है। परवरदिगार मेरी छोटी शहजादी का वास्ता, ये मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। सब मिल के आमीन बोलो। परवरदिगार बीवी सकीना की भूख और प्यास का वास्ता, जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, जो मखरूज उनके खर्ज अदा कर, सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया कर दे, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, वारिस अज़ा फरजंद जहरा इमाम ज़माना को सलामत रख, मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल फरमा, इमाम के जहूर में ताजील फरमा, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के।